भाव दादा के अनमोल रतन, आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी हमारे बीच में पधारे हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। दीदी जी का जन्म कोटा राजस्थान में हुआ। 1989 में आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी MBBS की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही आध्यात्मिकता में आपकी गहरी रुचि थी और 89 में ही अपनी MBBS पूर्ण करने के उपरांत ही आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं अर्थ समर्पित कर दिया। स्टार्टिंग में कुछ समय आपने राजस्थान, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा आदि स्थानों पर अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी। 91 से 2000 तक आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑफिसर अपनी सेवाएं दी और 2001 से 2007 तक परम श्रद्धे बड़े दादी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी के आप पर्सनल फिजिशियन रहने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। जन जन में स्वास्थ्य के प्रति जागृति लाने के लिए आपने अनेक स्वास्थ्य मेलों एवं अभियानों में भी भाग लिया। विश्व में स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिकता की अलख जगाने के लिए आपने अनेक विदेश के देशों में जैसे अमेरिका, UK, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, जापान, चाइना, रशिया आदि देशों में भी विजिट किया है। 2023 में ग्लोबल अलायंस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन USA के द्वारा आपको वुमेन फॉर एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। वर्तमान समय आप महिला प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। मानसरोवर कैंपस के आप प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, बाबा के राइट हैंड हैं। आपकी रूहानी मुस्कुराहट अनेक आत्माओं में उमंग उत्साह भरती रहती है और जैसे अभी आपका टॉपिक है, आपको कभी किसी ने क्रोध करते नहीं देखा। आपकी मीठी वाणी सबके हृदय को टच करती है, तो अभी हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करेंगे क्रोध और उसके साथियों पर कैसे विजय पाएं आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। रविवार को बाबा की मुरली हमने सुनी जो शिवरात्रि पर थी, तो बाबा ने उसमें कहा कि ब्राह्मण जो हैं वो भी व्रत रखते हैं, जैसे भक्त व्रत रखते हैं ऐसे हम ब्राह्मण भी व्रत रखते हैं, लेकिन वो हमारा व्रत आजीवन व्रत है। तो काम विकार का व्रत रखने में तो सभी विजयी बन जाते हैं, लेकिन उसका जो साथी है क्रोध, उस पर बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया और हमको एक महीने का टाइम भी दिया कि एक महीने में हमें अपने क्रोध पर विजय पा लेनी है। तो ब्राह्मण बनने के बाद भी हम क्रोध पर पूरी तरह से विजय नहीं बने, किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कारण से गुस्सा आ जाता है। अगर मैं अभी सभा में हाथ उठाऊं कि किसने अपने गुस्से को जीत लिया है तो हाथ उठाएं। देखो एक भी हाथ नहीं उठा रहा है, तो इसका मतलब गुस्सा अभी हम सभी को, क्रोध को हम थोड़ा हल्का समझते हैं ना, काम विकार पर थोड़ा ज्यादा अटेंशन देते हैं लेकिन क्रोध को थोड़ा हल्का समझते हैं, और कई बार ये भी समझ लेते हैं कि इसके बिना तो हमारा काम चलने वाला नहीं है, तो हम उसको एक हथियार की तरह भी यूज करते हैं। तो हम आपको ये जो दिखा रहे हैं प्रेजेंटेशन, ज्यादातर तो ये जब बाहर हम प्रोग्राम करते हैं तो उनको ये दिखाते हैं, पर आपके लिए भी यूजफुल है, इसीलिए हमने सोचा कि ये प्रेजेंटेशन दिखा करके आपको ये टॉपिक क्लियर करेंगे। तो गुस्सा तो हम सभी को आता है, वो देख लिया हमने कि हम अभी कोई भी ज्ञान मिलने के बाद भी गुस्से को जीत नहीं पाए हैं। तो गुस्सा हर देश, संप्रदाय, संस्कृति, चाहे वो किसी भी व्यवसाय के हों, वो गुस्सा करते हैं, और कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन TV में या अखबार में या रेडियो में गुस्से के कारण कोई हिंसा हत्या का समाचार ना हो। ऐसे कोई ना कोई समाचार होते हैं, जैसे कुछ दिन पहले एक समाचार था, कुछ समय पहले, कि एक इंजीनियर थे, उनकी वाइफ को मायके जाना था, तो उसने पूछा उनको, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाना है, लेकिन उसको जाना ही था। तो इस बात को लेकर के दोनों में बहस होने लगी। अब गुस्सा बढ़ जाता है कई बार ना, कई आगे पीछे की बातें भी निकल आती हैं, तो वो उनको इतना गुस्सा आया, उसकी गोदी में 6 महीने की बच्ची थी, उसको उठाकर उन्होंने पटक दिया और वो उसी समय मर गई ना, क्योंकि वो तो इतना छोटी बच्ची में कितनी जान होती है। और फिर जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस उनको पकड़ के ले गई। बात तो कोई बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी सी बात थी, लेकिन गुस्सा जब बढ़ता है तो क्या स्थिति होती है मनुष्य की? पागलपन। मनोविज्ञान कहता है कि ये टेम्परेरी इंसैनिटी है, थोड़े समय का पागलपन है। जैसे एक पागल व्यक्ति को ये भान नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे ही क्रोध में मनुष्य की स्थिति होती है, विवेक पूरी तरह नष्ट हो जाता है। और इसीलिए फिर इसका असर हमारे संबंधों पर आता है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए, और वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। अब शब्द जब भी हम गुस्से में आके बोलते हैं तो उससे दुख पहुंचता है, और इसीलिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता ना। कहने वाला तो शायद भूल जाएगा पर सुनने वाला उसे नहीं भूलेगा, और जीवन पर्यंत कई बार लोग उसको पकड़ लेते हैं, आपने मुझे ऐसा कहा था, और उसका असर हमारे संबंधों में प्रेम पर आता है, प्रेम खत्म हो जाता है, और कई बार संबंध टूट भी जाते हैं उसकी वजह से। और गुस्सा जो है एक वो सेल्फ पैरालाइजिंग इमोशन है, यानी ये व्यक्ति को बिल्कुल कमजोर असहाय बना देता है, माना गुस्से में इंसान इतना परवश हो जाता है। फिर ये एक एसिड की तरह है, जिसे जिस पात्र में डाला जाए वो उस पात्र को ही नुकसान पहुंचाता है। जैसे गुस्सा हम करते हैं तो हम सोचते हैं हम दूसरे को बता रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान हम अपने आप को पहुंचा रहे हैं, और गुस्से से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, और ही हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अच्छा, किसी को लगता है कि गुस्सा करके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? लगता है किसी को? हमेशा प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ जाती हैं, और गुस्सा करने वाले किसी के आदर्श नहीं हो सकते, कोई भी उनको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, कोई पोस्ट है, पोजीशन है, मजबूरी है, मानना है, रिस्पेक्ट करना है तो करेंगे, लेकिन दिल से उनको आदर्श अपना नहीं मान सकते। फिर एक इन्फेक्शियस डिजीज की तरह है, माना जैसे एक संक्रामक रोग लग जाता है, ऐसे ही गुस्सा भी लगता है। माना कोई गुस्सा कर रहा है तो सामने वाला भी सबकॉन्शियसली खुद ही गुस्से में आ जाता है ना, तो गुस्सा गुस्से को जन्म देता है। और गुस्से की जो तीव्रता है, माइल्ड इरिटेशन, थोड़ा मन में चिढ़ते हैं, नाराज होते हैं, थोड़ा आवेश में आते हैं, ये भी गुस्से के रूप हैं, जैसे कहा ना गुस्से का सूक्ष्म रूप। और फिर उससे बढ़कर जो सबसे अति का रूप होता है वो है बेकाबू गुस्सा, ऐसा गुस्सा जिसमें व्यक्ति मारपीट करना शुरू कर देता है। बोलने की बात तो छोड़ो ना, मारपीट पे उतर आते हैं, फिर चीजें उठाकर फेंकना शुरू कर देते हैं, और यहां तक कि किसी की हत्या भी कर देते हैं, जैसे अभी हमने समझा एग्जाम्पल में देखा हमने कि हत्या कर देते हैं, ये भी उनको एहसास नहीं होता, लेकिन जब हो जाता है तब पता चलता है ये मैंने क्या कर दिया, और उसका फिर परिणाम तो सामने आता ही है। तो ये गुस्से के अति रूप, जिसके कारण आज दुनिया में कितनी घटनाएं होती हैं। तो हम अपने गुस्से की भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं? तो एक तो है एग्रेसिव वे, जो देखा बिना सोचे समझे रिएक्ट करेंगे, और फिर बाद में पछताएंगे, अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसको कहते हैं एग्रेसिव वे। और ज्यादातर 90% लोग ऐसे ही गुस्सा करते हैं, उसी समय जैसे ही परिस्थिति पैदा हुई। बिना कारण के तो गुस्सा नहीं होता है, बिना कारण के कोई गुस्सा करेगा, है ना? कोई ना कोई कारण बनता है और हम बिना सोचे समझे शुरू हो जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। अगर ज्ञानी है तो ज्ञान याद आ जाता है, बाबा ने ऐसे बोला, ऐसे करना था, ऐसे नहीं करना था। और दूसरा तरीका है एसर्टिव वे। एसर्टिव वे का मतलब हम तुरंत नहीं बोलते, थोड़ा परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर हम रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मानो माँ है, बाजार में गई और अपना राशन लेकर आई घर के लिए, और जब वो घर पहुंची तो उसे किचन में काम करना है, तो उसने अपना बटुआ जो है वो घर में जो सोफे के सामने टेबल टिपोई रखी होती है उसके ऊपर रख दिया उसने, और उसका 2 साल का छोटा बच्चा है जो खेल रहा है। अब बच्चे तो बहुत क्यूरियस होते हैं, तो उसने देखा वो पर्स पड़ा हुआ है तो वो उठा लिया उसने, और वो पर्स खोल लिया, फिर उसमें नोट है, 500 रुपए का नोट निकाला, और बच्चा तो खेलने लगा, उसको थोड़ी पता है ये 500 रुपए का नोट है, और फिर खेलते खेलते उसने नोट को फाड़ दिया। अब माँ बाहर आई रसोई से और उसने देखा ये क्या हाल हुआ है, 500 रुपए के नोट का और मेरा पर्स सारा ऐसे बिखरा पड़ा है ना, बिना सोचे समझे लगा दिया एक जोर से उसको, और वो बच्चा जो है फर्श पे सिर के बल गिरा, थप्पड़ मारा तो वो फर्श के बल गिरा और उसके सिर में चोट आ गई, और बच्चा रोते रोते बेहोश हुआ, उसको अस्पताल ले जाना पड़ा, और वहां पर उसका 1000 रुपया खर्चा हो गया जब तक बच्चा ठीक हुआ। तो ये है एग्रेसिव, बिना सोचे समझे लगा दिया। अब अगर इसको हम एसर्टिव वे, मतलब अगर हम इस रूप से गुस्से को व्यक्त करेंगे यानी रिस्पॉन्स करेंगे, तो उसको ये सोचेगी वो कि ये 2 साल का बच्चा है, ये तो ना समझ है, इसको क्या पता, ये मेरी गलती है जो मैंने पर्स यहाँ रख दिया। अगर मेरे घर में छोटा बच्चा है तो ऐसी चीजें मुझे संभाल कर रखनी चाहिए। तो जैसे ही वो ये रियलाइज करेगी, बच्चे को कुछ नहीं कहेगी, लेकिन आगे के लिए खुद उस बात का ध्यान रखेगी कि मैं कोई भी चीज ऐसे ना रखूं जो बच्चे के हाथ में आ जाए। तो ये है एसर्टिव वे कि परिस्थिति को समझकर फिर उसको रिस्पॉन्स करना, तो वो स्थिति ही पैदा नहीं होगी गुस्से की। फिर कुछ लोग सप्रेस करते हैं अपने गुस्से को, मानो वो अपने अधिकारी के सामने है या कोई हमसे बड़ा है, वो हमें कोई बात कह रहा है। अब होता ही है कि कोई किसी ने कोई गलती कर दी या उसको कोई शिक्षा देनी है, बात कहनी है, सावधानी देनी है, तो अब हमें उनकी बात अच्छी नहीं लग रही, गुस्सा आ रहा है, लेकिन अभी हम को चुप रहना पड़ेगा क्योंकि हमसे बड़े हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, या अधिकारी है उनके सामने कुछ बोल दिया तो भविष्य का परिणाम बुरा हो सकता है, तो चुप रहते हैं, लेकिन वो गुस्से को पी लेते हैं, है ना, अंदर ही अंदर गुस्सा रहता है। और फिर वो गुस्सा भी हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, जो इस प्रकार का गुस्सा जो बार बार अपने गुस्से को दबाते हैं, भले ही सामने से दिख रहा है कि हमने सहन कर लिया, हम चुप रह गए, लेकिन उसका असर फिर हमारी मेंटल हेल्थ पर पहले आता है। वो व्यक्ति या तो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगेगा या उसको इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और फिर बदले की भावना रहेगी उसके मन में, और फिर वो बीमारियों का रूप लेने लगता है। तो यहाँ तक कई बार कैंसर जैसी भी जो बीमारी होती है, जिनको जो ये बार बार अपने गुस्से को दबाते हैं, तो दबाने का मतलब है नेगेटिव हो जाते हैं, उस समय चुप रह जाते हैं लेकिन मन में नेगेटिव हो जाते हैं, तो उसका असर फिर हमारे शरीर की हेल्थ पर आता है। तो ये दोनों प्रकार के लोग जो एग्रेसिव और एसर्टिव हैं, उनमें क्या अंतर होता है? तो जो एग्रेसिव लोग होते हैं वो हमेशा जोर से ही बोलेंगे और बॉसिज्म यानी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो असर्टिव लोग होते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी होती है ना, कोई शांत स्वभाव के भी होते हैं, तुरंत नहीं बोलते हैं, तो वो किस तरह से होंगे, वो हमेशा अपनी बात को स्पष्ट और सीधे शब्दों में कहते हैं और वो अपनी भावनाओं को बहुत शांत और सहज भाव से, अपनी बात नहीं कहेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन शांत और सहज भाव से अपनी भावना को वो व्यक्त करते हैं और वो हमेशा ही दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करते हैं और दूसरों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि दूसरे भी हमारे अधिकार का सम्मान करें। और जो अपनी नीड्स को हैं वो शांत भाव से कहते हैं, दूसरों को वो दोष नहीं देते हैं लेकिन अपनी भावनाओं की जिम्मेवारी वो खुद लेते हैं कि अगर ये फीलिंग मेरे अंदर आ रही है तो इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, है ना। नॉर्मली हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, इसने ऐसा किया ना इसलिए मुझे गुस्सा आया या इसलिए मुझे फीलिंग आई, नहीं, अगर मुझे गुस्सा आया तो उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। और जो एग्रेसिव हैं वो बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं। अब गुस्से में हमारी शारीरिक स्थिति कैसी होती है वो तो हम सब जानते हैं। गुस्से में सबसे ज्यादा असर चेहरे पर आता है, सबसे ज्यादा बिगड़ता है वो क्या बिगड़ता है, चेहरा बिगड़ता है और लाल हो जाता है, पसीना छूटने लगता है, शरीर कांपने लगता है, हमारा जो ब्लड फ्लो है वो ब्रेन से मांसपेशियों की तरफ बढ़ने लगता है, तो इसीलिए मांसपेशियां तन जाती हैं और इसीलिए फटाफट हाथ उठता है मारने के लिए, और ब्रेन से ब्लड नीचे आता है तो विवेक खत्म हो जाता है, है ना, क्योंकि ब्लड कम जा रहा है दिमाग में तो फिर विवेक काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति सब उल्टा पुल्टा करता है, जो उसको नहीं करना चाहिए वो करता है और सांस जो है वो तेज तेज चलने लगती है और हमेशा गुस्सा करने के बाद व्यक्ति को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि ये मैंने क्या किया या पश्चाताप करना पड़ता है। फिर इसका असर हमारे शरीर पर आता है, हमारी जो बॉडी फिजियोलॉजी है वो इफेक्ट होती है और शरीर में गुस्सा एक तनाव का रूप है, तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं या गुस्से में आते हैं तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन बनता है और ये स्टिमुलेंट्स हैं तो हमारे सारे सिस्टम को वो उत्तेजित कर देते हैं, हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हमारे हार्ट की जो खून की नलियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और उससे हो सकता है कि हार्ट को ऑक्सीजन कम मिले तो व्यक्ति को चेस्ट पेन महसूस हो सकता है। अगर किसी के ब्लॉकेजेस हैं, आजकल तो पता ही नहीं चलता, यंग एज में भी लोगों को ब्लॉकेजेस होने लग गए हैं तो फिर उसको अटैक भी आ सकता है और हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो 3 गुना तक कम हो जाती है। तो एक पेशेंट जो है वो आया हॉस्पिटल में चेस्ट पेन की कंप्लेंट लेकर के, उसका ईसीजी हुआ तो पता चला उसको माइल्ड हार्ट अटैक हुआ है तो उसको सीसीयू में एडमिट कराया, लेकिन जो नर्स थी वो बिजी थी दूसरे पेशेंट में, तो उसने सोचा ठीक है हल्का है मैं अभी इनको देख लेती हूँ। तो जब नहीं आ रही थी नर्स उसके पास तो उसको गुस्सा आने लगा कि मैं इतनी देर से अस्पताल में आया हूँ, मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो गुस्से के कारण उसका जो माइल्ड अटैक था वो मैसिव अटैक में बदल गया और फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको बचा नहीं पाए। तो इसीलिए हार्ट पेशेंट्स को डॉक्टर कहते हैं ज्यादा गुस्सा मत करो, शांत रहो, रिलैक्स रहो, क्योंकि उसका सीधा असर हमारे हार्ट के ऊपर या हमारे सिस्टम के ऊपर आता है। तो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है और कितना हमारा हार्ट ऑलरेडी डैमेज्ड है उस पर डिपेंड करता है कि उसका असर कितना उसके ऊपर आएगा। फिर हमारे ब्रेन पर भी असर आ जाता है क्योंकि हमारी जो ब्रेन की जो खून की नलियां हैं, जो बहुत बारीक बारीक नलियां होती हैं, वो रप्चर हो सकती हैं गुस्से में जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उससे कई बार किसी को ब्रेन स्ट्रोक वगैरह, और खासकर जो बड़ी उम्र वाले हैं 60 साल की उम्र के ऊपर उनकी उम्र है, तो फिर ये इफेक्ट ज्यादा देखने में आता है कि ब्रेन डैमेज होने लगती है और मसल्स पे असर आता है। हमारी 80 मांसपेशियां शरीर की जो हैं वो एकदम तन जाती हैं, यानी स्पैज्म में आ जाती हैं, तो उससे सिर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, बॉडी एक्स होना, ये शिकायत हो सकती है। ये हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है, क्योंकि कॉर्टिसोल भी बनता है शरीर में, तो रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर की कम होने लगती है, तो कई बीमारियां उसके कारण होने लग जाती हैं। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर होता है, तो क्या होता है, वो कमजोर होता है। और एक बीमारी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें आंतें कमजोर हो जाती हैं, तो वो बीमारी ज्यादा होती है। फिर हमारे को मानसिक प्रभाव भी देखने में आते हैं, केवल शारीरिक प्रभाव नहीं, मानसिक प्रभाव। मानसिक प्रभाव तो हम इमीडिएटली नोट कर लेते हैं, गुस्से के बाद शांति मिल जाती है, क्या कहेंगे, शांति मिलती है, मन अशांत हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, मन टेंशन में आ जाता है, मन नेगेटिव हो जाता है, और सामने वाले के प्रति घृणा भाव, नेगेटिव यानी बदले की भावना उसके प्रति मन में होती है, और हमारी बुद्धि की क्षमता कमजोर हो जाती है, यानी एकाग्र नहीं कर पाते मन को, कई घंटों तक आप फिर ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, और आपकी जजमेंट पावर भी कम हो जाएगी। और कई लोगों का तो एबनॉर्मल बिहेवियर होने लगता है, गुस्सा, जो गुस्से वाले स्वभाव के होते हैं, नॉर्मली ब्राह्मण इतने गुस्से वाले नहीं होते हैं, मोटे रूप से गुस्से को जीत लेते हैं, लेकिन जो दुनिया में होते हैं, कई बार जो बात बात में गुस्सा करने की जिनकी आदत होती है, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड में भी गुस्सा रजिस्टर रहता है, और वो सपने में भी गुस्सा करते रहते हैं, तो पता चलता है कि गुस्से में ही वो चिल्ला रहे हैं, तो क्योंकि वो सपने में ही गुस्सा कर रहे हैं, तो ऐसा अब नॉर्मल बिहेवियर भी हो जाता है कईयों का। और ये हमारे लिए सामाजिक रूप से भी हानिकारक है, क्योंकि हमारे रिलेशंस बहुत खराब होते हैं, हम लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे लोग दोस्त बनते हैं, दुश्मन बनते हैं। तो ऐसे जो गुस्सा करने वाले होते हैं उनसे लोग दूरी बनाकर रखते हैं। हाँ, मानो अगर वो कोई पोजीशन पर है और गुस्से वाला है, बात बात में डांटते हैं, तो क्या सोचते हैं, इनके नजदीक तो जाना ही नहीं है, जाएंगे तो क्या होने वाला है, पता है, दूर ही रहो इनसे, तो अवॉइड करते हैं, फिर ऐसे लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करता है। बाबा मुरलियों में कहता है कि जो जहां गुस्सा है वहां पानी के घड़े भी सूख जाते हैं, तो व्यक्ति की शांति और समृद्धि को ये खत्म करने वाला विकार है। खुशी को, शांति को, प्रेम को, समृद्धि को, ये पूरी तरह से, जहां भी गुस्सा है, चाहे हम घर में रहते हैं, सेंटर पे रहते हैं, अगर हम ये गुस्से को यूज करते हैं तो ये हमारे स्थान के वातावरण को अशांत बनाने वाला है, हमारे प्रेम को खत्म करने वाला है। और जो गुस्सा करते हैं वो उनका स्वभाव जिद्दी स्वभाव हो जाता है, माना अपनी ही बात को मनवाने का जो स्वभाव होता है, ऐसा स्वभाव उनका हो जाता है। और ये जो सामाजिक रूप से और दुष्प्रभाव देखने में आते हैं, कि आज जो भी एंटी सोशल एक्टिविटीज होती हैं सोसाइटी में, गैर सामाजिक गतिविधियां लोग करते हैं, किसी का अपहरण कर लेते हैं, किसी को फोन पे धमकी देते हैं, या चोरी करते हैं बदला लेने की भावना से, किसी के प्रति अगर उनके मन में ऐसी भावना आ गई है ना, और सामने सामने नहीं कर सकते, तो फिर अपरोक्ष रूप से इस तरह से वो अपना बदला लेते हैं, तो लेकिन बीच क्या है, गुस्सा है, अपना गुस्से को वो इस तरह से निकालते हैं। तो ऐसी कितनी घटनाएं आज समाज में होती हैं जो हम सुनते रहते हैं, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो आज युद्ध चलते हैं, या आज जितना भी आतंकवाद फैला हुआ है, वो अपने गुस्से को इस रूप में निकालते हैं कि युद्ध पर ही उतर आते हैं। लड़ाइयां क्यों होती हैं, आपस में भी कोई लड़ाई झगड़ा क्यों करता है, कल की परसों की मुरली में था ना, बाबा ने कहा लड़ना झगड़ना ये सब, दम चक्र मचाना, रूठना रूसना, ये सब क्या है, तो लड़ना झगड़ना माना किससे, क्रोध के कारण ही हम लड़ते झगड़ते हैं, तो चाहे हम पर्सनल लेवल पर लड़ते झगड़ते हैं, चाहे समाज में दंगे फसाद होते हैं, चाहे देशों के बीच में आपस में लड़ाइयां होती हैं। अब मानो भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया, तो क्यों अटैक किया, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को मारा, उसका गुस्सा हमने कैसे उतारा, उसका बदला लेकर के, है ना। तो इस तरह से युद्ध की स्थिति बन जाती है, युद्ध हो जाते हैं, तो ये इसका कारण भी वही है। और जितनी भी गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं, सरकार के विरुद्ध स्ट्राइक्स कर देते हैं, या जो भी कंपनियां होती हैं कहाँ उनके जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल करते हैं, तो उसका कारण भी यही होता है कि वो मैनेजमेंट के प्रति, अगर मैनेजमेंट उनकी बात नहीं मानता या सरकार उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रही, जैसे किसानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया जैसे हम सुनते हैं, तो फिर वो अपना गुस्सा कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं। तो ये हर तरह से हानिकारक है, कहने का भाव ये है। ये क्या हुआ, अच्छा। तो गुस्से के चार प्रकार हैं। एक है पानी पर लकीर के समान, गुस्सा आया और गया, पानी पर लकीर ठहरती नहीं है। तो कई लोगों का गुस्सा ऐसा होता है कि रहता नहीं है मन में लेकिन आ जाता है। तो कैसा ये होता है ये गुस्सा, जहां आपस में बहुत प्यार है, एक दूसरे के प्रति समीपता है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे माँ का बच्चे के प्रति प्यार है, या गुरु का एक अपने शिष्य के प्रति है, एक शुभ भावना रहती है, लेकिन कोई बात समझा रहे हैं वो समझ नहीं रहे, तो उस समय एकदम गुस्से में कह दिया उसको, लेकिन मन में नहीं रहता। यानी फिर जैसे ही रियलाइज हुआ कि मैंने जोर से बोल दिया या मैंने गुस्सा कर दिया, तो उससे भी ज्यादा प्यार उसको करेंगे और मन पे कभी भी उस गुस्से को नहीं रखते। जैसे माँ कभी भी बच्चे के प्रति गुस्से को अपने मन में नहीं रखती है, तो आने जाने वाला गुस्सा होता है, उसको कहते हैं लाइन इन वाटर। दूसरे प्रकार का गुस्सा है रेत पर लकीर के समान। अब रेत पर जो लकीर है वो कुछ घंटों तक रहती है, तो जब आपसी रिश्तों में कोई अनबन हो जाती है कोई बात को लेकर के, तो फिर नाराज हो जाते हैं। तो उसमें समीप संबंध जैसे पति पत्नी का है, सास बहू का है, दुरानी जुठानी का है, अब रहते अगर साथ में हैं तो एक दो के बिना काम तो चलता नहीं, तो कुछ घंटे नाराज रहेंगे, मूड ऑफ रहेगा, है ना, एक दो से बात नहीं करेंगे, पर अब काम नहीं चल रहा है तो फिर एक ना एक थोड़ा झुक जाएगा, है ना, अपनी गलती मान लेगा और फिर वापस वैसे के वैसे, तो थोड़ा घंटे तक चलता है। फिर गुस्सा मिट्टी पर लकीर के समान, तो मिट्टी पर लकीर कुछ दिनों तक रहती है। तो ऐसे रिश्ते हमारे जो दूर के रिश्तेदार हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं, और हमारे बीच में कोई बात हो गई, अब वो रोज तो नहीं मिलते हैं, इसीलिए फिर जब कोई अवसर पर वो मिलेंगे, हम उनको वो बात स्पष्ट करेंगे, तब जाकर के फिर से हमारा रिलेशन नॉर्मल हो सकता है। तो वो दिनों तक चल जाएगा, महीनों तक भी चल सकता है। लेकिन लाइन ऑन रॉक का मतलब चट्टान पर लकीर, है ना, चट्टान पर जो लकीर होती है वो अमिट होती है, मिटती ही नहीं है कभी, जिंदगी भर आप चट्टान पर लकीर मिटा सकते हैं। तो किसी के प्रति कईयों का गुस्सा ऐसा होता है कि जिंदगी भर दुश्मनी रखते हैं, वो मर भी जाएंगे तो दूसरे जन्म में भी वो संस्कार लेकर जाएंगे और उस जन्म में भी वो दुश्मनी चालू है। हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसे हम देखते हैं ना कईयों को, देखते ही हम देखना भी नहीं चाहते, हाँ वो कभी हमें पसंद ही नहीं आएंगे। तो कहाँ से आ रहा है, वो पूर्व जन्म से आ रहा है। तो ये चीजें आत्मा को देखते वो याद नहीं आता, लेकिन वाइब्रेशन ऐसा होता है कि कोई पूर्व जन्म का ही हिसाब किताब ऐसा आत्मा लेकर के आई होती है। और कई फैमिलीज में ये पीढ़ी का पीढ़ी चलेगा, हालांकि रेयर होता है, ये बहुत कॉमन नहीं है, माना हो सकता है 1,00,000 में से कोई एक ऐसा हो जो इस तरह की दुश्मनी रखता है कि सारी जिंदगी वो कभी भी उससे फिर अच्छे रिश्ते में या वो प्रेम से उनसे बात करेंगे ही नहीं। अब किन कारणों से हमें गुस्सा आता है, वैसे तो आपसे पूछना चाहिए पहले, हाँ, किन कारणों से गुस्सा आता है, क्योंकि सभी को गुस्सा तो आता ही है, हर एक का एक अलग अलग कारण भी हो सकता है या कॉमन कारण भी हो सकते हैं, तो आप लोग शेयर करेंगे पहले क्यों गुस्सा आता है। हाँ, सबसे बड़ा कारण 70% गुस्सा आता है, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, जैसा हम कह रहे हैं, फिर वो कोई भी हो, एबीसी कोई भी हो, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी तो हमको गुस्सा आ जाता है। और कोई गलती करता है, बराबर है, कोई गलती करता है और फिर हम समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहा है, अपनी गलती मानते भी नहीं है, कई गलती करके भी गलती नहीं मानते, गुस्सा आता है। हाँ, फिर और हाँ, सही समय पे काम नहीं हो रहा है ना, काम ही नहीं कर रहे सही, और मैंने सही समय मतलब जैसा काम चाहते हैं वैसा कर नहीं रहे, और हाँ, बार बार समझाने से भी समझ नहीं आता है। और भी कारण हो सकते हैं, हाँ एक बार फिर से जोर से बोलेंगे, हाँ हाँ, ये सबसे ज्यादा जहां सहन करने वाली बात आती है ये पोजीशन है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन सामने वाला तो बुराई करने में लगा होता है, जैसे कि उसने ठान ही लिया है कि वो हमारे साथ पूरी दुश्मनी किसी भी तरह से निकालेगा, बिल्कुल उस समय बहुत गुस्सा आता है, और मतलब एक रीजन है। और हाँ जी, इच्छा के विरुद्ध कार्य करने से। चलो अभी हम देख लेते हैं क्या क्या कारण है, छोटे बड़े सभी प्रकार के कारण, कोई हमारी चीज को हमारे से बिना पूछे यूज कर लेता है, गुस्सा आता है नहीं आता, फिर कोई चार लोगों के सामने मेरा मजाक बनाता है, आएगा नहीं आएगा, फिर कोई चार लोगों के सामने मेरी कमी निकालता है, माना निंदा करता है, मेरे बारे में गलत बातें कहता है, फिर आपने कोई गलती नहीं की लेकिन फिर भी आपको उसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है ना, आपको पता है मैंने नहीं किया, लेकिन कई बार दूसरों के कहने से भी ऐसा हो जाता है, गलत फहमी होती है, पहले से ही हम बहुत बिजी हैं और ऊपर से काम बताए जा रहे हैं, कोई हमने काम किया और सामने वाले ने आकर के हमारा काम बिगाड़ दिया, आप जा रहे हैं और स्टेशन पे पहुंच गए, पता चला कि ट्रेन 2 घंटा लेट है, ऐसे ही होता है कई बार, है ना, आजकल तो वैसे सोशल मीडिया है तो फटाफट पता चला लेते हैं ट्रेन टाइमिंग वगैरह का, लेकिन कई बार नहीं पता चलता, और अगर ट्रैफिक में भी फंस गए मानो तो बहुत लोगों को ट्रैफिक में भी गुस्सा आता रहता है, आप कब तक फंसे रहेंगे, कब निकल पाएंगे यहाँ से, तो खीज होती है या इरिटेशन होता है, वो भी गुस्से का ही रूप है। कोई एड्रेस पूछते हैं हम किसी से और वो हमें गलत रास्ता बता देता है और हम भटकते रहते हैं और हम टाइम पर नहीं पहुंच पाते, तो फिर उस पर गुस्सा आने लगता है जो हमें वो बताता है। हमने किसी के साथ प्लान बनाया और थोड़ा सा हम लेट हो गए तो वो सारे तो चले गए और हम रह गए, तो फिर उनके ऊपर गुस्सा आता है। तो ये छोटे छोटे कारण जो कई बार हम रियलाइज भी नहीं करते। अब गुस्से का निवारण क्या है, ये सारी चीजें तो हैं लेकिन उन पर विजय पानी है हमको, तो फिर कैसे हम अपने गुस्से पर विजय पाएं इन सब कारणों के होते हुए भी, ये तो होते ही रहेंगे, कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन इनमें से एक कारण हमारे सामने ना आए, हो सकता है ना, बाबा कहता है समस्याएं ना आए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन वो सब होते हुए भी मुझे गुस्से का अंश वंश भी प्रकट ना हो, मनसा में भी बाबा ने कहा ना, मनसा में भी मुझे गुस्सा ना आए उस आत्मा के प्रति, तो हमें ये समझना होगा पहले कि इसका कारण क्या है, तो हम निवारण सहज कर लेंगे। तो जैसे कॉमन कारण बताया कि दूसरे जब हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते या हमारी इच्छा के अनुसार जैसा हम व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार नहीं करते। तो अब हम ज्ञानी हैं और बाबा ने हमें समझा दिया कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, विचार, भावनाएं, संस्कार अलग अलग हैं। कोई दो आत्माएं एक जैसी हैं? हैं क्या? तो हर एक आत्मा अलग है, उसका स्वभाव क्या है वो मुझे समझना है। और अगर हम उसको समझते हैं, मानो वो मेरी बात नहीं मान रहा, तो जरूर वो मेरे से कुछ अलग सोच रहे हैं, तभी मेरी बात नहीं मान रहे। तो फिर हम उनको भी समझने की कोशिश करें कि उनका विचार क्या है। वो मेरे ही अनुसार चले नहीं, मैं उनको भी समझूं। तो अगर हम उनको भी समझते हैं तो ये एक आपसी समझ हो जाती है और फिर क्रोध की स्थिति पैदा नहीं होती, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, इनका इनका क्या विचार है। और ये भी कि जैसे बताया कि वैरायटी आत्माएं हैं, तो अगर कोई आत्माएं ऐसे स्वभाव की हैं तो हमें साक्षी होकर के उनके पार्ट को देखना है। अगर हम किसी से अपेक्षा रखते हैं इसको मेरी बात माननी चाहिए, मानो हाँ हमारी फैमिली में है या जहां हम काम कर रहे हैं या सेवा पर हैं, तो हमारे साथ जो भी साथी हैं या हमारे छोटे हैं, तो वो 10 में से 9 बार हमारी बात मानते ही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं, लेकिन कभी एक बार ऐसा होता है जब उनको लगता है कि उनकी राय ज्यादा सही है, वो ज्यादा ठीक है, तो हो भी सकता है, है? जरूरी नहीं है कि हम ही हमेशा सही हों, कोई दूसरा भी वो भी सही हो सकते हैं। तो फिर हमें उनकी बात भी मान लेनी चाहिए। लेकिन यहां पर अगर हम रियलाइज नहीं करते तो अहम आ जाता है और फिर हम उनकी सही बात को भी गुस्से से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें समझ की जरूरत है। तो जब हम ये समझेंगे तो फिर इसके कारण जो गुस्सा आता है वो हमारा खत्म हो जाएगा। फिर दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कहा काम नहीं कर रहे, गलती कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, तो सामने वाला भय में आ जाता है। भय में आकर के वो जरूर वो करता है ना जो आप चाहते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है? उसके मन की भावनाएं बदल जाती हैं। हमारे प्रति जो प्रेम और सम्मान की भावना होनी चाहिए वो नहीं रहती। फिर वो दिल से काम नहीं करेंगे, जैसा काम हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। फिर वो मन में बदले की भावना लेकर घूमते रहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि चुप रह गए ना तो नेगेटिविटी तो है मन में, तो वो अवसर ढूंढते हैं और जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो आपके लिए समस्या जरूर पैदा करेंगे। तो इसके भविष्य परिणाम बुरे हो सकते हैं। फिर हम अपने लिए सोचें कि अगर कोई हमारे ऊपर गुस्सा करे तो हमें पसंद आता है, गुस्से से काम कराए हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है किसी को? हम सोचते हैं काम तो करना है, थोड़ा प्यार से तो बोल सकते हैं, थोड़ा अच्छी तरह से तो बात कर सकते हैं। तो जो व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों को भी पसंद होता है। तो यहां पर हमें अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें अगर गुस्से से काम करवाना है तो काम तो हो जाएगा, लेकिन उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। फिर बच्चों को भी कंट्रोल करते हैं, जो परिवार में है वो बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो बच्चे कंट्रोल तो हो जाते हैं गुस्से से, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होते हैं। हाँ, माताएं भी बैठी है ना यहाँ पर, बच्चों पर गुस्सा आता है नहीं आता है? तो आपने गुस्सा किया तो बच्चा पढ़ने बैठ गया, किताब खोल ली उसने, मोबाइल छोड़ दिया, टीवी छोड़ दिया, लेकिन हम गुस्से में फिर थोड़ी अच्छी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। हाँ, ये नालायक तो कभी सुधरने वाला है ही नहीं। हाँ, ये तो ऐसे बुद्धू माना हमारे घर में कैसे पैदा होगी, कुछ भी बोल देते हैं उस समय, और भले ही ब्राह्मण है लेकिन उस समय पता ही नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं। और फिर वो बच्चे किताब उठा के आपको खुश जरूर करते हैं लेकिन वो पढ़ रहे हैं, या वो ये सोच रहे हैं मेरी माँ ने मुझे ऐसे बोला, मेरे पिता ने मुझे ऐसे बोला, और कई बार वो आपसे सीख रहे हैं कि अगर मेरी माताजी पिताजी को अपनी बात मनमानी है तो गुस्सा करते हैं, तो फिर वो थोड़ा बड़े होकर के वही करने लगते हैं कि हमें अपनी बात मनमानी है तो क्या करो, गुस्सा करो। फिर आप सोचते हैं ये क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कौन सिखा रहा है, हम ही सिखा रहे हैं ना। हम जैसा आचरण करेंगे वही बच्चे फॉलो करते हैं, वो हमारे करने से ज्यादा सीखते हैं। बोलने से आप कितना भी शिक्षा दे दो उनको, उससे वो नहीं सीखते हैं। आप जो कर रहे हैं वो सीखते हैं। और कई बार तो आपको ही बता देंगे, मानो आप आते हैं सेंटर पर रोज तो कहेंगे मम्मी आप रोज ओम शांति में जाते हो और गुस्सा करते हो, तो आपको वही रियलाइज कराना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए कंट्रोल करने के लिए या किसी से भी काम करवाने के लिए, हो सकता है प्यार से अगर हम काम करवाते हैं या प्यार से धीरज से हम बोलते हैं तो सामने वाला थोड़ा हमको हल्के में लेता है, लेकिन उनके मन की भावनाएं कभी भी नहीं बदलेंगी और वो अच्छे से काम करेंगे। और बच्चों के लिए तो हमेशा उनको पहले हमें कन्विंस करने की जरूरत है। आप टाइम दें, उनको समझाएं, उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और बच्चों को ये समझ में आ जाएगा कि वो ऐसा क्यों करें, तो फिर वो जरूर वो करेंगे जो हम चाहते हैं। क्योंकि आज का समय जो साइंस और टेक्नोलॉजी की एज है, बच्चों को हर बात के पीछे कारण चाहिए कि वो ऐसा क्यों करें और क्यों नहीं करें, तो कन्विंस करना बहुत जरूरी होता है। तो सही तरीका हम यूज करेंगे तो बच्चों पर गुस्सा करने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर जब कभी अन्याय होता है, पार्शलिटी हो रही है, अन्याय हम क्या देखते हैं, इसके साथ तो बहुत अच्छे हैं और इनको बहुत हर तरह से आगे रखते हैं, या इनको तो बहुत जल्दी प्रमोशन मिल रहा है, और हम किसी भी तरह से इनजस्टिस अगर हम देखते हैं तो अंदर ही अंदर गुस्से में आते रहते हैं उनके प्रति। तो कभी भी हम गुस्से में आकर के अन्याय को दूर नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो जो भी संबंधित व्यक्ति है उससे हम बात कर सकते हैं, उसको हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं, और अगर लगता है हम नहीं कर पा रहे तो हम किसी तीसरे व्यक्ति को भी शामिल कर सकते हैं। तो उनको जब ये समझ में आएगा, हो सकता है कि उससे हमारा अन्याय समाप्त होगा, लेकिन गुस्सा करने से अन्याय समाप्त होने वाला नहीं है, वो और ही बढ़ सकता है। क्या सोचते हैं, गुस्सा करने से अन्याय खत्म हो जाएगा? नहीं हो सकता है। फिर कोई झूठ बोलता है, तो बाबा ने कई बार मूल्यों में कहा है कि किसी ने झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, हमने बहुत विश्वास किया उसके ऊपर, लेकिन उसने हमारे साथ ऐसा किया तो हमको बहुत गुस्सा आता है। तो उसने झूठ बोला, वो तो गलत किया, लेकिन हमने गुस्सा करके सही किया, तो बाबा कहते हैं वो तो फेल है ही है, लेकिन हम भी कोई पास तो नहीं हुए, हम भी फेल, क्योंकि गुस्सा कर लिया तो हम भी फेल हो गए। तो इसीलिए अगर कोई झूठ बोल रहा है, मानो मुझे समझ में आता है, पहली बात तो कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि ये झूठ बोल रहा है, पर अगर हमें पकड़ में आ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो हम उसको समझाएं कि अगर वो ऐसा व्यवहार करेंगे तो उनका विश्वास वो खो देंगे। अगर फिर भी उनका संस्कार है और नहीं बदलता, तो फिर ऐसी आत्माओं से हम सावधान रहें। उनके प्रति जो भी हमारे डिसीजन है, फिर वो उसी प्रकार से होने चाहिए, तो बस उससे हमें वो व्यवहार समझ कर करना है। दूसरे अगर हमारी आलोचना करते हैं या हमारी इंसल्ट करते हैं, जैसे आपने शेयर किया कि कोई भी हमारी कमी निकालता है, तो हमें कभी भी पसंद नहीं आता है। इंसान को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, पर एक कहावत है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई, तो निंदा करने वाला हमारा मित्र कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो हमारी कमी बता रहा है जब हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। और वैसे भी पुरुषार्थ करके हमें सर्वगुण संपन्न बनना है, तो हमारी कमियां तो हमें निकालनी ही है, लेकिन बाबा कहते हैं ना, बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर होती है, दूर की नजर तेज होती है। अपनी कमियां नहीं दिखती, दूसरे की कमियां हमें फटाफट दिख जाती हैं, तो वो तो मेरी कमी मुझे बता रहा है, जो मुझे नहीं पता है, तो फिर अगर हम उस कमी को दूर करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तो बल्कि और ही उन्हें थैंक्स करना चाहिए। लेकिन अगर हम नेगेटिव हो जाते हैं ना, नॉर्मली क्या होता है, हम उसको दुश्मन समझते हैं। अच्छा, इसने मेरे बारे में ऐसा कहा, ये खुद कैसे हैं, इनको भी तो हम अच्छी तरह जानते हैं। फिर वो एक कहेंगे और हम कितना कहेंगे, चार, कि वो कैसे हैं, वो चार बातें हम उनको सुनाएंगे। लेकिन ऐसे कहते हैं मनोविज्ञान में कि भले ही जो हमारी कमी बता रहा है वो 1% ही हमारे अंदर होगी, वो उसको मैग्नीफाई कर देता है, उसको बड़ा चढ़ा कर कहता है। मानो आप काम करते हैं, बहुत जिम्मेवारी से करते हैं, सही समय पर अपना काम करते हैं ना, लेकिन कोई कारण से आपका काम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, और जो क्रिटिक होगा वो उसको मौका मिल जाएगा, वो कहेगा ये है ही लापरवाह, ये हमेशा ही ऐसे करते हैं। अब आप सोचेंगे हम हमेशा तो ऐसा नहीं करते, हमेशा तो हम टाइम पर बिल्कुल जिम्मेवारी से काम करते हैं, लेकिन कोई ये कारण बना। पर अगर 1% भी हमारी लापरवाही हो रही है तो हम आगे से और अटेंशन देंगे तो सामने वाले को बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर कई बार गलतफहमी भी होती है, माना अब निंदा जो है वो कई तरह से हमारे सामने आती है, जिसको बाबा पर चिंतन कहता है। तो कई बार वो सचमुच नहीं होता है हमारे अंदर, पर कईयों को ईर्ष्या होती है। अब ये क्रोध के सूक्ष्म रूप है, ईर्ष्या होती है, नीचा दिखाना चाहते हैं हमें, या बड़ों के सामने ना हमारी इमेज खराब करना चाहते हैं। तो गलत सलत बातें कहेंगे, वो बातें सही हैं नहीं, लेकिन गलत सलत बातें हमारे बारे में कह देंगे या फैला देंगे, ऐसा भी होता है ना, बहुत नहीं होता होगा लेकिन होता है। तो फिर मानो हमें समझ में आता है, बात हम तक तो पहुंचती है और हमें समझ में आता है कि ये जो है ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है, तो फिर हम उस पर ध्यान नहीं दें। ऐसे नहीं उनसे हम दुश्मनी करें जो हमारे बारे में ऐसे बात कर रहा है, वो तो क्रोध का रूप हो जाएगा ना, लेकिन हम उस पर ध्यान ही ना दें जब वो बात है ही नहीं सही, और सच बात तो समय पर सामने आ ही जाती है। तो हम ध्यान नहीं देंगे तो उसका असर भी हमारे ऊपर नहीं होगा, जिसको बाबा कहता है दुख नहीं लेना है। दुख नहीं देना है वो तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन दुख नहीं लेना है इस रूप में हम दुख ले लेते हैं। मम्मा के पास, मम्मा कचहरी करती थी ना रोज, जब वो मंडली थी तो मम्मा को एक बहन ने सुनाया कि मम्मा ये बहन ने मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोला, और बिल्कुल भी वो सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। और मुझे ना मम्मा को कहा कि मम्मा ऐसे ऐसे क्यों करती है। तो मम्मा ने कहा अच्छा उसने तुम्हारे बारे में कहा और सही नहीं है, तुमको कहाँ लगा। तो बोलती मम्मा मन में लगा ना। तो मम्मा ने कहा अच्छा मन में कहाँ से गया। तो बोला कान से गया। तो मम्मा ने कहा कि जब वो ऐसी बात बोल रही थी तो फिर तुमने अपने कान क्यों नहीं बंद कर लिए। मम्मा ने उसको कहा देखो अगर तूफान आ रहा है तो हम क्या करते हैं, अपने खिड़की दरवाजे बंद करते हैं ताकि तूफान का असर हमारे घर में ना हो, जो भी उसके कारण नुकसान हो। तो जब तुमको लग रहा है कि वो ऐसा ऐसा बोल रही है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है तो तुमने क्यों ध्यान दिया। कान बंद करने का मतलब तुमने सुना ही क्यों, तो तुम ध्यान ही मत दो उसके ऊपर वो क्या बोल रही है, तो फिर तुम्हारे ऊपर उसका असर भी नहीं होगा। तो हमने इस चीज को बहुत बार यहाँ, जब हम इतने बड़े संगठन में रहते हैं मधुबन में, तो ऐसा तो होता नहीं है कि कोई आपके बारे में कोई बातें ना करे, लेकिन जब समझा कि ये सही नहीं है तो ध्यान ही नहीं दिया, ना ही उनसे कभी कहा कि आपने ये जो कहा ये गलत है। समय पर अपने आप वो सामने आ जाता है कि सही या गलत, जब हम है ही नहीं गलत तो अपने आप सिद्ध हो जाता है कि। तो ये हमारी चॉइस होती है कि उस समय हम कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बाबा के ज्ञान के अनुसार अगर हम चलते हैं वो पॉइंट हमें याद आ जाती है, जैसे कहा ना वो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, तो तुरंत हमारी विजय हो जाती है। किसी भी रूप में वो गुस्से का कारण बनता है। मानो कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, इंसल्ट माना चार लोगों के सामने मेरे लिए वो बोल रहे हैं, जैसे बहन जी ने कहा बुरा व्यवहार करते हैं वो हमारे लिए, तो बाबा ने हमें समझाया हुआ है वो आत्मा ऐसा क्यों कर रही है। एक तो हमारा हिसाब किताब हो सकता है, तो पूर्व जन्म का कर्ज मेरा चुक्त हो रहा है, हम और ही हल्के हो रहे हैं उसको लेकर। तो बाबा कहता है ग्लानी को गायन समझो, उसको क्या समझो, परिवर्तन कर लो कि यही आत्मा भविष्य में मेरा गायन करने वाली द्वापर। अभी ये गालियां चढ़ा रही हैं, आगे जाकर फूलों के हार मेरी मूर्ति पर चढ़ाने वाली, वो तब जब हम अभी विजयी बनेंगे। अगर अभी उसके प्रति हम रहम दिल रहते हैं, उनके प्रति फिर भी हम शुभ भावना रखते हैं, उनको हम शांति का सहयोग देते हैं, चुप रहेंगे तो शांति का सहयोग दिया ना, उसको ही हम सहन करना कहते हैं। बाबा कहता है जो सहन करता है वो क्या बनता है, सहनशाह। अगर सहन नहीं किया तो सहनशाह भी नहीं बनेंगे। और किसकी आज्ञा से हम सहन कर रहे, किसकी आज्ञा से, भगवान की आज्ञा से हम सहन कर रहे हैं। तो भगवान की श्रीमत है, तो उसका फल बाबा हमें देने वाला है, तो वो भविष्य प्राप्ति हमारी इतनी ऊंची है, तो फिर हम क्यों नहीं सहन कर सकते। यानी परिवर्तन कर, परिवर्तन करेंगे तब हम सहन कर पाएंगे। ऐसे ही असंतुष्ट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। कब असंतुष्ट होते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं अपनी, फिर अपने आप को कमजोर हीन भावना में आ जाते हैं। तो हो सकता है किन्हीं बातों में हम किसी से कमजोर हो, माना तुलना करने से दो भाव पैदा होते हैं, या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं मेरे से अच्छा, या हम इनसे अच्छे हैं, या फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि हम ऐसे हैं, हम कम हैं। तो अगर दोनों ही भाव में आ गए तो वो बाबा कहता है अज्ञान है, और उसके लिए हमारे मन में वो ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव जरूर पैदा होगा, जो गुस्से के ही साथी हैं। तो यहां पर तुलना करने की बजाय, जैसे कहते हैं कि चिंता चिता के समान है, तो ईर्ष्या भी एक अग्नि है जो मनुष्य को जलाती है, तो हमारे लिए ही हानिकारक है। तो फिर हमें क्या करना है, किसी की प्रगति से या किसी की सफलता से ईर्ष्या करने की बजाय हम खुश हों, उनके प्रति शुभ भावना रखें, और हम ये देखें किन गुणों से वो आगे बढ़ रहे हैं। जो भी हम तुलना कर रहे हैं तो वो गुण योग्यताएं हम अपने अंदर भी लाएं, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। वो कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं वैसे ही हम भी पुरुषार्थ करें, तो ये सही तरीका है। फीलिंग इन्फीरियर इज डिफरेंट देन बीइंग इन्फीरियर। ये कोई भी बात में हम किसी से कम हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हम महसूस करें उसको, तो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम सब अलग अलग विशेषताओं वाले हैं, सब एक जैसी विशेषताएं तो है ही नहीं किसी की। तो फिर हम, पहली बात तो हमें तुलना ही नहीं करनी, करनी है तो अपने आप से करो, मुझे क्या लक्ष्य हासिल करना है, मेरा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए। लेकिन अगर करते भी हैं तो फिर हम किस तरह से करें, वो बाबा ने हमें बताया कि रेस नहीं करना है, क्या करना है, रेस करना है। फिर कई बार बहुत काम हमने कर लिया तो थके हुए होते हैं, जैसे कहा ना, और ऊपर से कोई काम बता दे तो फिर तो ऐसा कभी है, कभी सेवा के प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, रोज की तो बात नहीं होती है, या जहां भी आप काम करते हैं कभी कभी ओवरवर्क होता है, तो जब है तो हम अपनी स्थिति को खुद ही समझें कि भाई आज बहुत काम किया हुआ है, थके हुए हैं, अगर कोई कुछ कहेगा भी तो भी मुझे शांति से जवाब देना है, चिढ़ना नहीं है, आवेश में नहीं आना है, तो अपने आप को खुद ही समझाएं। फिर बीमार लोगों के साथ, या जो वृद्ध हैं हमारे घर में, हर एक के होते हैं, दादा दादी या जो भी सास ससुर जो वृद्ध होते हैं घर में, वो शरीर से कमजोर होते हैं, कोई ना कोई बीमारी लग जाती है बूढ़ी बड़ी उम्र में, तो फिर वो जल्दी गुस्सा होते हैं क्योंकि उनकी सहन शक्ति कम हो जाती है। अब हम उनके साथ रहते हैं, कई बार हम उनकी स्थिति को समझ नहीं पाते और फिर उनके साथ ही गुस्से में जवाब देने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, तो यहाँ पर क्या जरूरत है, हम उनकी स्थिति को समझें और वो जैसे भी हैं उनके साथ हमें स्नेह सहयोग का सम्मान का ही व्यवहार करना है। क्योंकि जो वृद्ध आयु वाले होते हैं उनको सम्मान चाहिए होता है, जिंदगी भर वो हमारे लिए करते हैं और अपनी अंतिम आयु के समय पर वो हमसे क्या चाहते हैं, वो प्यार और रिस्पेक्ट चाहते हैं। तो उनकी स्थिति को समझने, तो ज्यादातर घरों में झगड़े इसी बात को लेकर होते हैं कि जो वृद्ध आयु वाले हैं उनकी स्थिति को यंग लोग समझ नहीं पाते और बात बात में उनके साथ ही फिर उसी तरह से सामना करते हैं। ये जो दो हैं ये तो नॉन बीके के लिए, हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। अब गुस्सा जो हम रिएक्शन के रूप में करते हैं है ना, उसमें हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे हम सोचे हम अपनी बात कहेंगे है ना, शांत रह जाएं, उसको पोस्टपोन करें, हम अपनी बात कहेंगे लेकिन थोड़े समय के बाद कहेंगे। तो हमने सप्रेस भी नहीं किया क्योंकि सप्रेस करने से भी नुकसान होता है। तो बात कहेंगे लेकिन थोड़े समय के बाद कहेंगे, तो क्या होता है, थोड़ा समय बीतने पर ना हमारा दिमाग चलता रहता है, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि सारी गलती सामने वाले की नहीं है, कुछ गलती मेरी भी है, क्योंकि ताली तो दो हाथ से बजती है। तो जब ये समझ में आ जाता है तो हमारा आवेश वैसे ही कम हो जाता है। और नहीं तो अगर सामने वाले की गलती है और हमें कहना ही है, नहीं कहेंगे तो फिर दोबारा वही होगा, तो फिर हम तब तक हमारा आवेश कम हो जाता है और वही बात हम कहेंगे शांति से अच्छे शब्दों में, तो फिर सामने वाला उसे स्वीकार करे और समाधान होगा। और नहीं तो जैसे बताया गुस्सा गुस्से को ही जन्म देता है। तो ये कोई भी गुस्से की स्थिति पैदा होती है तो हम अपने आप को ये जो बाबा ने हमें समझाया मुख में मुलहरा डाल दो, कई बार मुरलियों में बाबा कहता है, तो मुलहरा डालने का मतलब क्या है, थोड़ा उसको पोस्टपोन कर दो, उस समय तुरंत मत बोलो। या बाबा ये भी कहते हैं उसके पर फूल चढ़ाओ, तो फूल चढ़ाना, तो ऐसे फूल चढ़ाने जाएंगे तो वो और ही भड़क जाएगा, लेकिन फूल चढ़ाने का मतलब मुस्कुराते रहो आप, बस स्माइल करते रहो, तो उसको लगे ही नहीं कि मेरे गुस्से का असर इनके ऊपर हो रहा है। बोलो मत कुछ भी लेकिन शांत रह जाओ। अब इसके ऊपर क्या परवश है, वो ये जो है इसके ऊपर कई एग्जाम्पल कहानियां हो सकती, लेकिन मैं टाइम देख रही हूं तो मैं उसको स्किप कर रही हूं। और फिर अवेयरनेस हो, जैसे कहा कि जितना जागृति हम अपने गुस्से के प्रति जागृत रहें, यानी हमें ये पता है कि इससे कितना नुकसान हो जाएगा। आप हमने देखा गुस्सा कितना हमारे लिए जीवन में हानिकारक है, बाबा खुद भी कहते हैं कि गुस्सा करते हैं तो हमने विकर्म किया वो 100 गुना दंड होता है ना, ये शायद हम भूल जाते हैं गुस्सा करते समय, या हम बाबा का नाम बदनाम करते हैं क्योंकि गुस्सा प्रत्यक्ष हो जाता है, जब और विकार इतना प्रत्यक्ष नहीं होते जितना कि गुस्सा प्रत्यक्ष हो जाता है, तो फिर सीधा बदनामी होती है। किसकी बदनामी होती है, हाँ हम ज्ञान में चलते हैं तो फिर बाबा कहते हैं सदगुरु का निंदक, तो फिर हमें ऊंच पद नहीं मिलेगा, ठौर मतलब। तो ये हमें ध्यान में अवेयरनेस होना चाहिए हमको इसका। जैसे कोई भी बात का नुकसान पता होता है, जैसे एक हार्ट पेशेंट को पता है कि अगर मैंने तला हुआ खाया, ज्यादा नमक खाया, तो मेरी बीमारी और बढ़ सकती है, तो उसको कंट्रोल करेगा। ऐसे ही एक शुगर वाले को पता है कि मैंने ज्यादा मीठा खाया, डॉक्टर तो बताते हैं ना कि ये परहेज है, ज्यादा मीठा खाओगे तो आपकी शुगर दवाइयां लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं होगी, तो वो मीठे को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो पूरी तरह से उसको बंद नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी पहले जैसे खाते थे उससे तो आधा कर देंगे, और भी इतना कि सिर्फ मीठे को थोड़ा चख लिया और फिर छोड़ देंगे। तो ध्यान रखते हैं ना, जब ये अवेयरनेस आ गई कि ये चीज हमें इतना नुकसान करने वाली है, तो ऐसे ही जब हमें ये रियलाइजेशन है कि ये क्रोध हमारे लिए कितना हानिकारक है और ब्राह्मण जीवन में तो विशेष, तो फिर हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करते लेकिन पूरी तरह से उसे कंट्रोल करते हैं। और कोई हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है, जब बहन ने कहा कि हम रहम दिल बने, तो ये भी स्थिति होती है, एक तो हम गुस्से में आते हैं और दूसरा होता है लोग हमारे ऊपर बिना मतलब गुस्सा कर रहे हैं, या कोई कारण से भी हमने ही ऐसी कोई गलती कर दी जो दूसरा गुस्सा कर रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए, तब हमें ये समझना है कि वो आत्मा परवश है, और उसके प्रति हमारा जो व्यवहार है वो सहयोग का होना चाहिए, ना कि हम उसके जैसे हो जाएं कि एक का दो, दो का चार और चार का दस करें या जैसे को तैसा करें, नहीं। लेकिन हमें उस समय सहन कर लेना है जो हमने समझा, और फिर ये जो गुण हैं हमारे जीवन में, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, पॉजिटिविटी, शांति, ये सब गुण गुस्से के एंटीडोट हैं। जैसे विष का एक एंटीडोट होता है, तो अगर वो एंटीडोट देते हैं तो विष खत्म हो जाता है। तो बाबा योग करने के लिए हमें कहते हैं, तो योग से इन गुणों का विकास होता है हमारे जीवन में, है ना। हम शांति के सागर के बच्चे हैं, शांत स्वरूप आत्माएं हैं। तो अगर मुझे ये रियलाइजेशन है, सारे दिन में कितनी बार अगर ये चिंतन मेरा है तो मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, वो उसके लिए एंटीडोट का काम करेगा। या जितना हमारा प्रेम है किसी के प्रति, है ना, प्यार का सागर है बाबा, और वो प्रेम स्वरूप हमारा ज्यादा इमर्ज रूप में रहता है, या सुख देने का भाव है दूसरों के प्रति, तो जहां देने का भाव है और खासकर जहां प्रेम है वहां हमारी सहन शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। जिसके प्रति आपका प्रेम होता है वो कोई गलती करता है तो गलती लगती है उसकी, या जैसे माँ को बच्चों की गलती कैसी लगती है, ये तो बच्चे हैं गलती कर देते हैं, तो ऐसे आसानी से माफ कर देते हैं। अगर कर भी दिया तो माफ करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। क्षमा करने का जो गुण है वो इन गुणों के कारण नेचुरल होता है। बस 5 मिनट पूरा, वो क्या है, सेटिंग करने में टाइम लग गया। तो इसीलिए इन गुणों को हमें बढ़ाना है। तो रोज जो हम योग अभ्यास करते हैं उसमें हम अपनी रीप्रोग्रामिंग करें। कई बार जो गुस्से का संस्कार है वो इतना कड़ा होता है हमारा कि हम कितना भी सोच लेते हैं फिर भी क्या होता है, जैसे ही कोई बात गुस्से वाली हुई हम बिना सोचे समझे उसको किए हुए होते हैं। तो उसके लिए फिर हमें उस कड़े संस्कार को बदलने के लिए जब हम योग करते हैं तो योग में हम अपनी प्रोग्रामिंग करें। जब हम अच्छा योग माना, चाहे अमृत वेले, चाहे शाम को हमने पावरफुल योग किया, जैसे भट्टी में भी आप लोग योग कर रहे हैं, तो फिर उस समय हम अपने मन को विचार दें, माना आपको पता है क्यों गुस्सा आता है और किन लोगों के ऊपर आता है। कुछ लोग ही होते हैं जो हमारा ज्यादा गुस्सा कराने के कारण बनते हैं, और वो हमारे आसपास ही होते हैं, दूर वालों पर तो हम वैसे भी नहीं करते, है ना। तो हमें देख लेना है कि कौन कौन है जो मेरे इस विकार को ट्रिगर करते हैं। तो आप देखो क्यों करते हो, समझ में आ जाता है, तो समझ में आता है तो फिर वो थॉट दो अपने आप को कि ये आत्मा भले ही मेरा कहना नहीं मानेगी तो भी मुझे गुस्से से बात नहीं करनी है, शांति से बात करनी है। ये आत्मा अगर मेरे से झूठ बोलेगी, मानो अगर कोई ऐसा है, तो भी मुझे उससे प्यार का ही व्यवहार करना है या प्यार से ही समझाना है, या ये गलती करेगी तो भी गलती की समझानी, पहले से ही विजुलाइज करो उसको। और फिर जब वो स्थिति पैदा होगी, वो होनी ही है क्योंकि वो व्यक्ति आपके आसपास ही है, तो मुझे वो याद आ जाएगा जो मैंने योग में अपने सब कॉन्शियस माइंड को विचार दिया। तो भले हो सकता है कि पूरा कंट्रोल ना हो पाए, लेकिन अब जो उसकी इंटेंसिटी होगी, तीव्रता, वो पहले से कम होगी। जैसे ही मुझे याद आ जाएगा अरे मुझे नहीं करना है, रोज आप ये थॉट दो, है ना, क्योंकि हमें संस्कार बनाने के लिए कुछ टाइम लगता है। बाबा ने क्या समझाया उसे अपने आप को खुद समझाओ, और फिर मानो 10 बार हुआ ऐसे कि हम पूरी तरह से उसको नहीं जीत पाए, लेकिन 11वीं बार जरूर ऐसा हो जाएगा कि वही स्थिति है, वही व्यक्ति है, लेकिन अब आपको गुस्सा नहीं आया। तो ऐसे हम गुस्से के संस्कार पर पूरी तरह से विजय पा लेते हैं। तो ये जो बाबा ने हमें विधियां बताई, और कुछ जो है कि हम समझें उस स्थिति को, ऐसी स्थिति पैदा हो रही है और उस समय अभी मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, हम क्रोध पर पूरी तरह से विजय पा सकते हैं। अभी थोड़ा और भी है लेकिन अभी मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर आपका शाम का भी प्रोग्राम है और भी कुछ प्रोग्राम है। ओम शांति।